In this session, we come to the truth of the Blessed Trinity.
इस सेशन में हम तस्लीस की मुबारक सच्चाई पर गौर करेंगे.
Yesterday we considered together God's unity or oneness of being.
और कल हमने खुदा की ज़ात में इत्तेहाद और उसके वाहद होने के बारे में सीखा.
As we looked at His incommunicable attributes in session 3.
और अब जो है हम खुदा की सिफात पर गौर करेंगे.
Now we shall largely presuppose God's absolute oneness of being.
और कल जो है हमने ये सीखा कि किस तरह खुदा की सिफात गैर मुश्तरका में से एक ये है कि वो जो है वो एक है.
Instead, now we shall prove and develop the biblical teaching of the threeness of God.
और इसी तरह से आज हम बाइबल मुकद्दस में से ही ये बात सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस ही ये तालीम देती है कि एक खुदा में किस तरह तीन अशख़ास पाए जाते हैं.
God is one in being and three in persons.
खुदा ज़ात में एक है लेकिन उसमें शख्स तीन हैं.
The crucial importance of the Holy Trinity.
Speak up again.
The crucial importance of the Holy Trinity.
पाक तस्लीस की खास अहमियत.
Is underscored by the opening lines of the Apostles' Creed.
इसकी जो अहमियत है वो रसूलों के अकीदे से वाजे होती है.
Which Arslan read earlier.
जो कि मैंने कल पढ़ा भी था.
The Trinity is vital for knowing God and understanding His mighty works.
तो जो पाक तस्लीस है वो हमें सिखाती है कि किस तरह यानी उसकी तालीम हमें सिखाती है कि खुदा किस तरह जो है वो काम करता है.
A God who is not triune is not God.
खुदा जो कि सालूस नहीं है खुदा नहीं है.
Let us begin with some pointers to the plurality of God in the Old Testament.
हम पुराने आदमों में खुदा की जात में इत्तेहाद के हवाले से सीखेंगे.
First, we consider the Hebrew word Elohim.
सबसे पहले हम लफ्ज एलोहिम पर गौर करेंगे.
This is the plural of the Hebrew word Eloha.
ये इब्रानी लफ्ज Eloha से है यानी इसकी जमा है Eloha की.
The Hebrew plural Elohim hints at a plurality of persons in God.
तो ये जो लफ्ज है Elohim ये चूंकि Eloha की जमा है तो इससे भी साबित होता है कि खुदा की जात में कसरत है.
Elohim is used about 2600 times in the Old Testament.
2600. ये 2600 इस्तेमाल हुआ है.
It is also used in the very first verse of the Bible.
और ये बाइबल मुकद्दस की पहली आयत में इस्तेमाल हुआ है.
In the beginning God Elohim.
यहाँ पे लिखा है खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया.
Elohim created the heavens and the earth.
तो वहाँ पे जो लफ्ज़ खुदा है वहाँ पे इब्रानी मतन में लफ्ज़ है Elohim.
Number two, plural Hebrew participles are used for God.
और इसके अलावा इब्रानी जो अल्फाज हैं उनमें जो है ये बात साबित है कि खुदा की जात के लिए कसरत के जो है सीगे इस्तेमाल हुए हैं.
Remember now thy creators plural.
ये जानो कि तुम्हारा खालिक खुदा.
Remember now thy creators in the days of thy youth.
और अपनी जवानी के दौरों में खालिक खुदावंद को याद रख. तो वहां पर भी जो है वो सीगा जमा इस्तेमाल हुआ है.
That's Ecclesiastes 12 verse 1.
और ये वाइस की किताब में लिखा हुआ है कि अपनी जवानी के दौरान 12वें बाब में.
Here's another quote from the Old Testament.
एक और हवाला पुराने आदम में से.
Thy makers plural are thy husband.
और इसी तरह से एक और हवाला है ये कौन सा which were references?
That's Isaiah 54 verse 5. Thy makers are thy husband. But you don't need to quote the whole verse, just that phrase.
Yeah, yeah,
thy
yeah,
makers are thy husband. Isaiah 54 verse 5.
क्योंकि यसाया 54:5 में लिखा है क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है. तो यहाँ पे जो लफ्ज खालिक है वो भी सीगा जमा में आया है इब्रानी मतन में.
On significant occasions,
और मुख्तलिफ मकामात पर,
God uses first person plural pronouns regarding himself.
और इसी तरह से खुदा की जात में ना सिर्फ कसरत के सीगे इस्तेमाल हुए यानी कि जमा के सीगे इस्तेमाल हुए हैं बल्कि इसमें ज़मीर भी इस्तेमाल हुए. इसमें ज़मीर कहते हैं ही शी इट को यानी जब हम किसी अपने किसी शख्स के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसका जिक्र करते हैं.
At the creation of Adam and Eve, God said,
आदम और हवा की तखलीक के दौरान खुदा ने कहा
Let us make man in our image.
और खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबी पर बनाएं.
After our likeness.
Yes, I told them.
That's three times in the first chapter of the Bible, us and our regarding God.
तो यहां पर भी इसमें ज़मीर का इस्तेमाल हुआ कि तीन मर्तबा खुदा ने बार बार ये अल्फाज कहे कि आओ हम.
At the fall of our first parents, God said,
और जब आदम और हवा ने गुनाह किया,
Behold, the man is become as one of us.
और तो खुदा ने क्या कहा कि ये हम में से एक की मानिंद हो गया.
To know or determine good and evil for himself as a sinner.
तो फिर देखते हैं कि किस तरह से ये आदम के लिए और हवा के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया जब उन्होंने गुनाह
किया. That's Genesis 3 verse 22.
3:22 पैदाइश 3:22.
At the Tower of Babel, fallen man's first attempt to forge a global anti-God kingdom.
और जब बाबल के बुर्ज पर भी हम देखते हैं कि लोगों ने सरकशी की.
God said, "Let us go down and confound their language."
तो वहाँ पर भी खुदा ने कहा, आओ हम नीचे जाएं और देखें.
That's Genesis 11 verse 7.
पैदाइश 11 में ये हवाला जो है ये मौजूद है.
Apart from the Trinity, how does anyone make sense of those inspired scriptures?
तो पाक तसलीस की समझ के बगैर कौन पाक कलाम कुदस को समझ सकता है?
Now let's consider the call of Isaiah.
अब हम यशाया के बुलावे की तरफ आते हैं.
He was the greatest and most evangelical of the 16 writing prophets.
ये उन 16 जो है नबियों में से एक है जिससे बहुत ज्यादा जो है वो आपको पता है जिसे अहमियत हासिल है.
The 16 writing prophets found at the end of the Old Testament canon.
और ये उन नबियों में शामिल है जिसकी किताब जो है वो पुराने आदम में शामिल है.
I'm appealing to Isaiah 6 quoted by all four gospel accounts.
और यशाया छठा बाब.
And in the last chapter of Acts.
और अमाल की किताब का आखिरी बाब.
God asks,
खुदा कहता है,
whom shall I send?
कि मैं किसे भेजूं?
And who will go for us?
और हमारी तरफ से कौन जाएगा?
That's Isaiah 6 verse 8.
तो ये यशाया 6:8 है मेरे ख्याल में कि खुदा कहता है कि हमारी तरफ से कौन जाएगा. तो ये भी इसी का जमा है.
God refers to himself in the singular as I with respect to his being.
तो खुदा जो है वो यहां अपनी जात की बात करता है.
God refers to himself in the plural us with regard to his persons.
तो क्योंकि खुदा की जात पे कसरत है इसलिए खुदा यहां पे लफ्ज हम का इस्तेमाल या हमारी का इस्तेमाल करता है.
After looking at those Old Testament pointers to the Trinity,
अब पुराने आदम के जो हवाले हमने देखे हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं.
Now we move to the three persons individually.
अब हम एक इन तमाम शख्सियत को एक-एक करके देखेंगे.
Obviously, the Bible teaches that the Father is God.
बाइबल में फरमाती है खुदा जो है वो बाप है.
And the deity of the Son, the second person,
और यीशु मसीह की अलुहियत जो है ये जो पाक तसलीस का दूसरा कानून है,
is easy to prove from the scriptures.
और ये भी बाइबल को से साबित करना बहुत आसान है.
Even from the Old Testament.
हत्ता के पुराने आदम में से भी.
There is the angel or messenger of the Lord par excellence.
और पुराने आदम में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खुदावंत का फरिश्ता, तो वो भी असल में खुदावंत यीशु मसीह के लिए ही वहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है.
The angel of the Lord is spoken of in about 30 chapters of the Old Testament.
और ये पुराने आदम के 30 अबवाब में इस्तेमाल हुआ है.
All the way from Genesis to Malachi.
पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक.
The angel or messenger of the Lord is called
खुदा का यह पैगंबर या खुदावंद का यह फरिश्ता
Jehovah, Exodus 3 verse 7.
ये पुराने आदम का यहोवा है जिसमें यानी पुराने आदम में खरूज की किताब में जिसे यहोवा कहा गया है.
The God of Abraham, Isaac and Jacob, Exodus 3 verse 6.
अब्राहम याकूब इसहाक और याकूब का खुदा.
Exodus 23 verses 20 and 21 say that the name of God is in him.
और which is the reference?
Exodus 23 verses 20 and 21.
खरूज की किताब 23 बाब में लिखा है कि खुदावंत का नाम उसमें रहता है.
And the name of God is everything in God, God as he reveals himself.
यानी हवाला ये है, बात ये है कि पुराने आदम में यीशु मसीह के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है खुदावंत का फरिश्ता या पैगंबर. तो उसके बारे में खरूज 23 में कहा गया कि मेरा नाम उसमें रहता है.
Psalm 45 verses 6 and 7 were sung earlier. We'll quote them.
Yeah. اے خدا تیرا تخت عبدالعباد ہے تیری سلطنت کا سا راستی کا سا ہے. زبور 45:6. Yes.
Christ is addressed as having a throne and being referred to as O God.
اور یسوع مسیح کے پاس جو ہے وہ تخت ہے.
That's his deity.
یہ اس کی الوہیت ہے.
And Christ is referred to as being anointed by God That's his human nature.
اور جب مسیح کو مسح کیا گیا تو یہ اس کی انسانی فطرت ہے.
You know this Bible verse.
آپ اس بائبلی حوالے کو جانتے ہیں.
For unto us a child is born.
آپ سب اس حوالے سے واقف ہیں کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا.
Unto us a son is given.
اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا.
And the government shall be upon his shoulder.
اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی.
The government of the church. And his name shall be called Wonderful Counselor.
اور اس کا نام ہوگا عجیب مشیر.
The Mighty God.
خدا قادر.
The Everlasting Father.
ابدیت کا باب.
The Prince of Peace.
اور سلامتی کا شہزادہ.
And you know that's Isaiah 9 verse 6.
اور یہ عیسائیہ 9:6 میں ہے. آپ سب اس آیت سے واقف ہیں.
Besides the angel of the Lord and Psalm 45 and Isaiah 9,
aur in sab hawalon aur khudaon ke farishte ka zikr karte hue,
I could appeal here to Isaiah 40.
Ab main Isaiah 40 ki baat karunga.
The passage we looked at in our opening service together.
Ye wo hawala hai jise humne jab conference ka aagaaz hota ye wala humne tab padha tha.
In this chapter, the one John the Baptist prepared the way for, he is called.
Aur isme hum Yohanna Istibaghi ki jo hai uske bare mein seekhte hain.
Our God, verse 3.
Aur uski teesri ayat mein likha hai Khudawand.
The glory of the Lord, verse 5.
Aur phir panchvi ayat mein Khudawand ka jalal.
Your God, verse 9.
اور پھر نویں آیت میں ہمارا خدا یا اپنا خدا.
And the Lord God, verse 10.
اور پھر دسویں آیت میں خداوند خدا.
Are you convinced yet?
کیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟
But you were already convinced before.
لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کو پہلے سے اس بات کا پتا ہے.
There are Old Testament passages which refer to Jehovah or God.
اور پرانے عہد میں بہت سے حوالے ہیں جو لفظ یہوہ کی یا خداوند کی بات کرتے ہیں.
Passages then which are quoted in the New Testament as referring to Christ.
اور اسی طرح سے نئے عہد میں بھی یا وہ نئے عہد میں وہ حوالے استعمال ہوئے جو پرانے عہد میں مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں.
Who was the glorious Lord sitting on a high and lofty throne who called Isaiah in chapter 6?
اور یسایہ چھٹے باب میں کس کو دیکھتا ہے جو تخت پر بیٹھا ہے؟ کون ایسا جلالی بادشاہ ہے؟
John 12 verse 41 says Jesus Christ.
اور یوحنا 12 باب جو ہے وہ فرماتا ہے کہ وہ یسوع مسیح ہے.
Who is the God who ascended and gave gifts to men in Psalm 68?
زبور 68 میں کون ہے جو آسمان سے اترا اس نے آدمیوں کو تحفے دیے؟
Ephesians 4 verse 8 says Jesus Christ.
افسیوں 4:8 فرماتی ہے کہ وہ یسوع مسیح ہے جو آسمان سے اترا اور اس نے اپنے لوگوں کو انعامات دیے.
Who is the God to whom every knee shall bow and every tongue confess in Isaiah 45?
اور کون سا خدا ہے جس کی حضوری میں ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے؟
Philippians 2 verses 10 and 11 says every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Jehovah.
فلپیوں 2:10-11 فرماتی ہیں کہ یسوع مسیح وہ شخص ہے یا وہ خدا ہے جس کی حضوری میں ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے خواہ وہ آسمانیوں کا خواہ وہ زمینیوں کا یا ان کا جو زمین کے نیچے ہے.
Who is the unchangeable God who created heaven and earth in Psalm 102?
زبور 102 میں وہ کون سا خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا؟
You've all guessed the answer.
آپ سب اس جواب سے واقف ہیں.
Hebrews 1 verses 10 through 12 says it is Christ.
اور عبرانیوں پہلا باب اس کی 11th-12th آیت میں لکھا کہ وہ یسوع مسیح ہے.
Jehovah searches man's hearts and gives everyone according to his ways. Jeremiah 17 verse 10 says.
اور یرمیا میں لکھا کہ خداوند ہر ایک کے دل کو جانتا ہے اور اس کے مطابق اس کا بدلہ دیتا ہے.
Revelation 2 verse 13 says Jesus does that.
اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے یسوع مسیح وہ شخص ہے جو ہر ایک کو اس کے کام کے مطابق کیا دے گا اجر دے گا.
And to search everyone's heart requires omniscience.
اور یہ اس کی ہمدانی کو ظاہر کرتا ہے یعنی ہر بات کو جاننے کو ظاہر کرتا ہے.
And to give everyone according to their ways requires infinite justice.
اور یہی اس کے عدل کو بھی ظاہر کرتا ہے.
In many ways and places, Scripture teaches Christ's pre-existence.
بہت سارے حوالے جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے اس کی موجودگی کا ذکر کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں.
He pre-existed John the Baptist, though John was conceived before him.
حتیٰ کہ یسوع مسیح یوحنا استباغی سے پہلے سے وجود رکھتا تھا اس سے پہلے کہ یوحنا پیدا ہوتا.
He pre-existed Abraham who died about 1800 years before him.
اور اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہوا یسوع مسیح موجود تھا.
He pre-existed the universe.
وہ کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی موجود تھا.
That's John 17 verse 5 and Colossians 1 verse 17.
یوحنا 17 اور کلوسیوں کا خط.
Micah 5 verse 2 says
Micah
5 verse 2
लिखा है लेकिन ए बैतलहम अफराता अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मसदर जमाना साबक हाँ कदीमुल अय्याम से है।
Coming to the New Testament, I will confine myself for proofs of the deity of Christ to just one book.
और यही हवाला जो है ये हमें नए अहदनामे में मिलता है।
The fourth gospel.
चारों अंजील में।
In the beginning was the Word.
इब्तिदा में कलाम था।
And the Word was with God.
और कलाम खुदा के साथ था।
And the Word was God.
और कलाम ही खुदा था।
That's the first verse of the gospel according to John. How clear do you want?
इससे ज्यादा आप और वाज़े कौन सी बात चाहते हैं?
You would have to be as blind as a Jehovah's Witness to fail to see it.
आपको पता है कि यहोवा विटनेस जो है वो इस बात को नहीं मानते, वो यानी कि बिदअती की तालीम देते हैं।
Here's another highlight from the Gospel according to John.
और इसी तरह से एक और हवाला यूहन्ना की इंजील में से।
Jesus said,
यीशु मसीह ने फरमाया,
Verily, verily, I say unto you,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ,
Before Abraham was, I am.
इससे पेशतर के अब्राहम पैदा हुआ,
not,
मैं हूँ।
Not I was before Abraham was, but I am.
यानी यीशु मसीह कहता है कि ये नहीं कहता कि मैं था, यीशु मसीह कहता है मैं हूँ।
I am that I am. Back to Jehovah, Exodus 3:14.
और इसलिए जो खरूज 3 में हमें यहोवा का नाम मिलता है, ये यीशु मसीह वही कह रहा है कि मैं जो हूँ, सो मैं हूँ।
And the Jews understood what Jesus was saying.
और यहूदी ये समझ गए थे कि यीशु मसीह क्या कह रहा है।
They took up stones to stone him.
इसलिए उन्होंने पत्थर उठा लिए और उसे संसार करना चाहा।
John records two other occasions when the Jews sought to kill Jesus for his explicit claims to deity.
और दो और हवाले यूहन्ना बयान करता है जिसमें यहूदियों ने ये कोशिश की कि यीशु को मार दें।
They sought to kill him in John 5 verse 18 because he said God was his father, making himself equal with God.
लिखा इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो न फक्त सब्बत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था।
In John 10 verse 33 they went to stone Christ for blasphemy because as they said you being a man makest yourself God.
और यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है।
We have a lack of time here.
हमारे पास यहाँ वक्त की कमी है।
I am now going merely to refer to five other New Testament verses.
मैं और पांच हवाले जो है वो यहाँ पर आपके सामने नया दम में
verses which prove Christ's divinity.
जो कि यीशु मसीह की अलूहियत को बयान करते हैं।
And those who want can write them down.
और जो उन्हें लिखना चाहते हैं वो लिख लें।
Romans 9 verse 5. Philippians 2 verse 6.
फिलिपियों दूसरा बाब छठी आयत।
Colossians 2 verse 9.
कुलसियों दो बाब दूसरा बाब नवीं आयत।
Titus 2 verse 13.
Titus
yes.
Yes.
2 verse 13.
तीतुस दूसरा बाब 13वीं आयत।
2 Peter 1 verse 1.
पत्रस का दूसरा खत पहला बाब पहली आयत।
If you want we can look at those verses afterwards if we have time.
हम इस सेशन के बाद इन पर बात कर सकते हैं जब हमारे पास वक्त हुआ तो।
Scripture teaches that not only the Father and the Son are divine persons.
बाइबल का फरमाती है कि सिर्फ बाप और बेटा जो है वही सिर्फ अलुहियत नहीं रखते।
But the Holy Spirit is also divine.
बल्कि रूह कुछ भी जो है वो भी अलुहियत रखता है।
Now a remark regarding our method.
और हमारे तरीकाकार के मुताबिक।
How do we prove that the Holy Spirit is God?
हम कैसे साबित करें कि रूह कुछ भी खुदा है?
And not merely an exalted creature.
और महज मखलूक नहीं है।
We use the same method as regards the Son.
हम वही तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं जो हम बेटे के हवाले से करते हैं।
Westminster Larger Catechism 11 is very helpful here.
Westminster का जो short तफसीली कैटेकिज्म है उसका सवाल नंबर 11 जो है वो इसकी वजाहत करता है।
It asks, How doth it appear that the Son and the Holy Ghost are God equal with the Father?
ये सवाल करता है कि रूह कुद्स और बेटा किस तरह बाप के साथ बराबर है?
I'll shorten the answer for you.
इसका मुख्तसर जवाब आपके लिए ये है.
It says the scriptures ascribe unto father and son.
जिस तरह बाइबल बाप और बेटे के हवाले से बयान करती है.
Such names, attributes, works and worship.
जिस तरह उसके काम, उसकी जात और उनकी सिफात को बयान किया जाता है.
As are proper to God only.
और जो सिर्फ खुदा के लिए ही इस्तेमाल होते हैं.
So any verse in the Bible that ascribes to the Son or now the Spirit.
और जो इसी तरह से हम रूल कुछ के लिए भी वही तरीका कार इस्तेमाल करते हैं.
The names of God.
खुदा के नाम.
The attributes of God.
खुदा की सिफात.
The works of God.
खुदा के काम.
Or the worship of God.
या खुदा की इबादत.
Any of these four things proves His deity.
ये सारे चारों बातें जो है ये वाज़े करती हैं कि रूल कुछ भी खुदा है.
Let me show you some divine attributes ascribed in the Bible to the Holy Spirit.
मैं चंद ऐसी सिफात पेश करूंगा जो बाइबल मुकद्दस में रूल कुछ के हवाले से है.
One, He is omnipresent.
पहली बात कि वो हर जगह मौजूद है.
For where shall I go from His presence?
ज़बूर 139 में लिखा है कि तेरी रूह से बचकर मैं कहां जाऊं?
That's Psalm 139 verse 7.
Yes.
Two, He is omniscient.
दूसरी बात, वो हर एक बात से, हर एक चीज से इल्म रखता है.
For the Spirit searcheth all things.
और वो तमाम चीजों की दरियाफ्त कर लेता है.
ये the deep things of God.
हत्ता के खुदा के तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है.
Earlier in this conference we read 1 Corinthians 2 verse 10.
और इस कॉन्फ्रेंस के शुरू में हमने पहला कुरिन्थियों 2:10 जो है उसका मुताला किया था.
He is eternal.
वो अजली और अबदी है.
Because Hebrews 9 verse 14 refers to the eternal spirit.
क्योंकि इब्रानियों का खत नवा बाब 14 आयत उसे अजली रूह कहती है.
The Holy Spirit is omnipresent, omniscient and eternal.
और इसलिए जो रूह कुछ है वो हर जगह मौजूद भी है, हमजा भी है, हमदान भी, यानी हर एक चीज का इल्म रखता है और जरा से अजली भी और अबदी भी है.
Therefore he is God.
इसीलिए वो भी खुदा है.
Later we will refer to the divine Holy Spirit in connection with God's works, God's worship, and God's name.
तो इसलिए ये चारों बातें जो पहले भी बयान की गई हैं, खुदा के नाम, खुदा की सिफात और खुदा के काम और खुदा की बल, ये सब बातें तीनों अकानीम पर जो है वो आती हैं.
I want you all to be confident as Christians.
मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है पूरा तमाद हों.
That the Bible clearly teaches the Trinity.
कि बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पर फरमाती है कि खुदा सालूस है.
And that
पाक तस्लीस को मानते हैं.
And that with some thought and application, you can prove it.
और आप भी जो है कुछ इतलाकात है जिनके जरिए से आप अमली बातें हैं, यानी जिनके जरिए आप भी इस बात को साबित करें.
So I repeat again.
मैं दोबारा से इसको दोहराऊंगा.
Any verse that ascribes to Son or Spirit.
कोई भी आयत जो रूह कुद्दस या बेटे के बारे में बात करती
है. God's attributes or works.
या खुदा के कामों या उसके सिफात के
बारे में. God's worship or name.
या खुदा की इबादत या उसके नामों के हवाले से बात.
Proves their deity.
वो इन तीनों अशखास की अलूहियत को बयान करती है.
There is a heresy that we must oppose here.
एक ऐसी बिदअत तालीम जिसकी हमें मुखालफत करनी है.
Sabellianism.
वो है सबेलियनिज्म, जिसे हम आमतौर पर वननेस पेंटिकॉस्टल या ओनली जीसस के नाम से जानते हैं.
It is named after a 3rd century theologian called Sabellius.
ये तीसरी सदी का एक रोमी उस्ताद था जिसका नाम सबेलियस था, उसके नाम से जानी जाती है.
Now listen very carefully and be discerning.
इसलिए ध्यान से सुने और गौर करें.
Sabellianism teaches that God is one in being.
ये सबेलियनिज्म जो है वो सिखाता है कि खुदा एक ही है जात में.
Is that correct?
क्या ये दुरुस्त है?
Yes.
बिल्कुल हाँ, ये ठीक है.
Sabellianism teaches that the Father is God, the Son is God, and the Spirit is God. Is that correct?
Sabellianism सिखाता है कि बाप भी खुदा है, बेटा भी खुदा है, रुकुस भी खुदा है.
Yes.
ये गलत है, ये सही है.
Yes.
सही है.
So what's the problem?
तो इस तालीम के साथ मसला क्या है?
Sabellianism denies that the Father and the Son and the Spirit are distinct persons.
Sabellianism इस बात का इनकार करता है कि ये तीन शख्स नहीं हैं.
Sabellianism claims that these are just masks or faces of God.
उनके मुताबिक एक ही खुदा के तीन चेहरे हैं.
Just ways in which God manifests himself at different times.
तो ये और खुदा ने अपने आप को मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर किया है.
Just modes of his self revelation.
और उसने खुद से जैसा वो अपने आप को जाहिर करना चाहता है वैसे ही उसने जाहिर किया. यानी पहले बाप की सूरत में जाहिर किया, फिर बेटे की सूरत में जाहिर किया, फिर रूह कुद्दस की सूरत में जाहिर किया.
Hence Sabellianism is also called modalism.
Sabellianism को modalism भी कहा जाता है.
So God is one in being,
खुदा ज़ात में एक है,
and three distinct persons.
और उसके तीन हैं अलग अलग जो है वो यानी जुदा गाना अकानीम है.
Over against Sabellianism,
इसके अलावा,
let us look together at passages where all three persons are referred to in the same passage.
अब हम उन हवालों पर गौर करेंगे जहां पे ये तीनों अशखास यानी अकानीम कहते हैं अशखास को. तो हम देखेंगे कि बाप बेटा और कुछ तीनों जो एक ही हवाले में उनका जिक्र किया गया है.
Here are three passages referring to the life of Jesus Christ on earth.
यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के हवाले से या जिंदगी के हवाले से.
First we have the annunciation to the angel of the angel Gabriel to the virgin Mary.
जब पहला हवाला जब जिब्रील फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया.
The Holy Ghost, third person, shall come upon thee.
और रूह कुद्दस उस पर आ गया.
And the power of the highest, first person, shall overshadow thee.
और वहां पर हवाला है कि काज मुतलक जो है वो उसकी कुदरत उस पर साया करेगी और वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा.
Therefore the Holy One that shall be born of thee shall be called the Son of God, second person.
वहां पर यानी तीनों जो है शख्सियत का हमें जिक्र मिलता है, बाप का भी, बेटे का भी और रूह कुद्दस का भी.
That's Luke 1 verse 35.
लुका पहला बाब 30वीं आयत.
Second, we move from the incarnation of the Son to Christ's baptism at the River Jordan.
और फिर हम दूसरी जगह यीशु मसीह के बपतिस्मे पर ये बयान पढ़ते हैं.
Listen for the references to the second person and the third person and the first person in Matthew 3:16-17.
मत्ती तीसरे बाब में हमें यीशु मसीह के बपतिस्मे पे भी जो है ये हवाला मिलता है जहां पर यीशु मसीह का बपतिस्मा है. लिखा है यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से यह आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं. तो यहां पर भी तीनों अकानीम जो है या तीनों अशखास जो है ये एक ही वक्त में मौजूद है.
Jesus is the second person who is baptized.
यीशु मसीह तस्लीस का दूसरा अकनूम है जो जिसका बपतिस्मा हो रहा है.
The Holy Spirit, the third person, comes down to him in the form of a dove.
और रुलकुस जो के तस्लीस का तीसरा अकनूम है वो रुलकुस की कबूतर की सूरत में उस पर उतरता है.
God the Father speaks from heaven.
और बाप जो है खुदा बाप जो है वो आसमान से क्या करता है कलाम करता है.
Moving from Christ's incarnation and baptism.
इस तरह से यीशु मसीह की पैदाइश और यीशु मसीह के बपतिस्मे के बाद
we come to his preaching ministry.
हम उसकी जमीनी जो उसकी अवामी मनाती है उसकी तरफ आते हैं.
Jesus said,
यीशु मसीह ने फरमाया,
the spirit of the Lord, third person,
यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदा का रूह
is upon me, second person,
यानी वो दूसरा अकनूम जो है वो तीसरे अकनूम के बारे में कह रहा है कि खुदा का रूह मुझ पर है.
Because he, third person, has anointed me, second person,
क्योंकि रूह ने उसे मसा किया है
to preach the acceptable year of the Lord, especially first person.
ताकि खुदावन के साले मकबूल की क्या करूं मुनादी करूं. तो यहां पर भी तीनों अकानीम जो है या तीनों खुदा के जो अशखास है खुदा में अशखास उनकी बात हुई है.
And the anointing of the Spirit comes upon Jesus according to his human nature.
और यीशु मसीह की बशरियत पे यानी उसकी बशरी जिंदगी पर हम उसका नज़ूल देखते हैं.
The truth of the Holy Trinity is manifest in all the works of God.
इसलिए पाक तस्लीस के जो कामों का इजहार है या उनकी सच्चाई जो है वो उसके कामों के जरिए जाहिर होती है.
God, as it were, could not perform any work except as triune.
यानी खुदा जो कुछ भी करता है यानी उसमें तीनों जो अशखास है तस्लीस के वो शामिल होते हैं.
Note the prepositions in God's works.
अब हम चंद बातों पर गौर करेंगे.
They are of the Father,
जो बाप के हैं,
through the Son,
बेटे के जरिए,
and by the Holy Spirit,
और उनको उसके वसीला से.
Let's elaborate on that.
अब इस पर हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे.
Note the specific roles of the three persons in God.
अब हम इनके किरदार पर इनके कामों पर गौर करेंगे.
They are of the Father as to source.
अब बाप जो है वो माखिज़ है या सब चश्मा है.
they are through the son as to Egypt.
और बेटा जो है वो उसके नुमाइंदे के तौर पर काम करता है.
And they are by the Spirit as perfecter.
और ये सारा कुछ जो है वो किसके जरिए करते हैं? रूह कुछ के जरिए करते हैं.
With that in mind, let us consider specific works of the triune God.
अब हम कुछ खास कामों पर जो कि खुदा सालूस के काम है उन पर गौर करेंगे.
We start appropriately with the creation in the beginning.
सबसे पहले तखलीक से शुरू करेंगे कि जहां पर लिखा है इब्तिदा में
God the Father creates.
खुदा बाप जो है वो तखलीक करता है.
Through God the Son, the eternal word.
अज़ली कलमे यीशु मसीह के जरिए से सारा कुछ वो बनाता है.
For in each of the six days, God said.
और इन छह दिनों में खुदा ने फरमाया.
Speaking all things into existence.
और जो कुछ खुदा ने फरमाया वो हो गया.
And concerning God the Word.
और खुदा के कलाम से मुतालिक.
All things were made by Him.
ये सारा कुछ खुदा के कलाम से बना है.
And without Him was nothing made that was made.
और कुछ भी उसके बगैर नहीं बना.
John 1:3.
Yohana 1:3.
The Father creates through the Son by the Holy Spirit.
बाप सब कुछ बेटे के जरिए खलक करता है रूह कुछ के वसीला से.
That's the second verse in the Bible.
ये दूसरी आयत है बाइबल कदस में.
The Spirit moved upon the face of the waters.
और हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब पहला बाब दूसरे में कि खुदा के रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? जुम्बश करती थी.
Then what happened? Later in day 6.
और छठे दिन क्या हुआ?
God, Elohim.
खुदा जो Elohim है.
That is Father, Word and Spirit said.
बाप, कलाम और रूह. वो क्या करते हैं? उन्होंने क्या कहा?
Let us make man in our image.
क्या हो हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं?
After our likeness.
अपनी छवि पर.
Genesis 1:26.
पैदाइश पहला बाब 26वीं आयत.
From creation we move to God's providence.
फिर हम तखलीक से परवरदिगारी पर जाते हैं.
This is the subject of our next session.
ये हमारा अगला मौजू है अगले सेशन का.
So I'll be very brief here.
मैं इसको यहाँ पर मुख्तसर तौर पर बयान करूंगा.
God the Father upholds and governs the entire universe.
खुदा बाप जो है वो सारा कुछ संभालता है.
Through the Son, who is God's hand, as it were.
खुदा अपने बेटे के जरिए से ये सारा कुछ संभालता है, जो समझ लें उसका बाजू है.
By the infinite touch and life-giving breath of the Holy Spirit.
रूह कुछ के समेले सांस की तरह, यानी रूह कुछ जो हवा की तरह है, उसके जरिए से ये सारा काम होता है.
God sends forth His Spirit and renews the face of the earth.
और खुदा जो है वो अपने रूह को ज़मीन पर भेजता है और सब कुछ जो है उसकी तज़दीद करता है.
That's Psalm 104:30.
ज़बूर 104 उसकी 30वीं आयत.
Now we have the Trinity and Revelation.
यहाँ अब हम पाक तस्लीस की और मुकाशवा की बात करेंगे.
The Father brings His word by the ministry of the prophets.
खुदा जो है वो अपने नबियों के जरिए से अपने कलाम को भेजता है.
The Father sends His word to the prophets through their word, the Son.
और इसी तरह से खुदा अपने पाकरुख को पाकरुख के जरिए अपना कलाम नबियों तक जो है वो भेजता है, नबियों को देता है.
For He is the chief prophet.
और क्योंकि यीशु मसीह जो है वो नबी आजम है.
And holy men of God, the prophets,
जो पाक लोग हैं, यानी जो उसके नबी हैं,
speak as they were moved by the Holy Spirit.
वो खुदा के रूह की तहरीक से बोलते हैं.
That's 2 Peter 1:21.
दूसरा पत्रस उसका पहला बाब 21वीं आयत.
And this Holy Spirit was sent from the Father.
और ये रूह कुछ है, या ये रूह जो है ये खुदा की तरफ से भेजा गया है.
And by the Son.
और यीशु मसीह के जरिए से.
Moving from creation, providence, and revelation.
अब तखलीक, परवरदिगारी और मुकाशवा के बाद, या इल्हाम के बाद, या नबुवत के बाद,
we come to the Trinity and salvation.
अब निजात के काम की तरफ आते हैं.
Our salvation is according to the Father's election.
हमारी जो निजात है वो इसलिए है क्योंकि खुदा ने ये सारा कुछ जो है इसका चुनाव किया है.
For He decreed it.
क्योंकि उसने ये सारा कुछ मुकर्रर किया है.
Our salvation is through the Son's redemption.
और हमारी निजात जो है वो किस तरह मुमकिन होती है? यीशु मसीह के बलिदान के जरिए से.
For He purchased it.
क्योंकि उसने उसे हमारे लिए खरीदा है.
Our salvation is by the Spirit's sanctification.
और हमारी जो निजात है वो किसके जरिए से मुकम्मल होती है? रूह कुद्दस के वसीला से.
For He applies the salvation the Father planned and the Son purchased.
और क्योंकि जो निजात खुदा ने जिसको मुकर्रर किया है, जिसका फैसला किया है और यीशु मसीह ने वो खरीदी है, उसे हमारी जिंदगी पर उसका इतलाक करता है.
Listen for this in 1 Peter 1:2. First Peter 1 verse 2. The Father, the Spirit, and Christ. First Peter 1 verse 2.
اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے
The Trinitarian salvation summarized by Peter in one verse
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نجات ہمیں خدا سالوس کی طرف سے ملی ہے وہ اس ایک آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے
is spelled out much more fully in Ephesians 1 verses 3 through 14
اور اس کا جو زیادہ وضاحت کی گئی ہے وہ افسیوں کے خط میں کی گئی ہے
predestination by the father
اسے خدا نے مقرر کیا ہے
redemption by the son
اور مخلصی جو ہمیں یسوع مسیح کے ذریعے سے ملی ہے
and the sealing by the Holy Spirit in our hearts
اور ہمارے دلوں پر کس نے مہر کی ہے روح القدس نے
this truth of the Holy Trinity is amazing
پاک تثلیث کی یہ جو سچائی ہے یہ نہایت شاندار اور زبردست ہے
the Holy Trinity is the incomparable and incomprehensible God
اور پاک تثلیث جو ہے یہ بعید القیاس یا ہماری سوچ سے بہت زیادہ بلند ہے
He is incomparable because no one and nothing is like him
کیونکہ کوئی بھی اس کی مانند نہیں ہو سکتا اس لیے یہ بعید القیاس ہے
Three persons in one divine being
تین شخص ایک ہی ذات میں کیسے ہو سکتے ہیں یہ ہماری سوچ کو جو ہے وہ ہلا دیتا ہے
The Holy Trinity is incomprehensible
پاک تثلیث جو ہے وہ بعید القیاس ہے
One divine being possessed fully and equally by three persons
یعنی ایک ہی ذات میں تین اقانیم یا تین اشخاص ہیں جو برابر ہیں ان کا کوئی بھی ان سے کم یا زیادہ نہیں ہے یا ایک دوسرے سے چھوٹے بڑے نہیں ہیں بلکہ برابر
What astounding depths
اس کی گہرائی
Man did not and could not invent such a wonder
انسان کبھی بھی اس کی گہرائی کے مطابق ایسی کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں بنا سکتا
The Trinity is the God of love.
پاک تثلیث جو ہے وہ خدا کی محبت ہے.
A God who is only one person has no one to love.
جب خدا اگر خدا کی ذات میں ایک ہی شخص ہو یعنی ایک ہی شخص خدا ہو تو پھر وہ محبت کو کیسے جان سکتا ہے؟
No one to love before the creation.
کوئی پھر کائنات سے پہلے یا اس کی تخلیق سے پہلے محبت نہیں کر سکتا.
And therefore his love is not self-sufficient.
کیونکہ اس کا محبت جو ہے وہ خود انحصاری پر ہے
And therefore such a being could not really be God at all
اور اگر وہ محبت کسی سے کرتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے محبت کا خدا ہو سکتا ہے یا محبت ہو سکتا ہے
But the Trinitarian God is love because
پاک تثلیث جو ہے وہ اس لیے یعنی بائبل میں آیت ہے خدا محبت ہے وہ اس لیے محبت ہے
The Father eternally loves the Son in the Holy Spirit.
کیونکہ باپ جو ہے وہ روح القدس میں اپنے بیٹے سے محبت رکھتا ہے.
And the Son eternally loves the Father in the Holy Spirit.
اور اسی طرح سے بیٹا بھی روح القدس کے ذریعے باپ سے محبت رکھتا ہے.
So his love is eternal before the creation.
اور اس کا جو ان کی جو محبت ہے وہ کائنات کے بنائے جانے سے پیشتر سے ہے.
And his love is self-sufficient.
اور ان کا جو محبت ہے وہ کسی دوسرے پر منحصر نہیں ہے
Because the Trinity doesn't need creation for objects to love
اور اس لیے جو ہے یعنی پاک تثلیث کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان سے محبت کرے وہ پہلے سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں
The Trinity is the God of fellowship and communion
اور اسی طرح سے جو پاک تثلیث ہے وہ رفاقت اور شراکت کا خدا ہے
Where does John 1 verse 18 locate the Son?
Which one?
John 1 verse 18. Where does he locate the Son? The Son is in the bosom of the Father.
اور پھر کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر یہ نہیں ہے رفاقت اور شراکت کو ظاہر کرتا ہے خدا کی
That's fellowship and communion. The Son is the living speech and word of the first person. That's communication and communion.
اور جو یسوع مسیح ہے وہ خدا باپ کا کلام ہے اور زندہ یا زندگی دینے والا کلام ہے
The Son is the perfect image who reflects the glory of the Father he loves
اور یسوع مسیح جو ہے وہ باپ کے کامل جو ہے وہ کہلے شبیہ ہے جو اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے
The Holy Spirit is the personal bond of communion between the first and second persons
اور اسی طرح سے روح القدس جو ہے وہ محبت کا تعلق ہے باپ اور بیٹے کے درمیان
He is the holy reciprocal personal breath
और ये पाप जो है ये सांस की मानद है या मतलब हवा की तरह है.
Of loving fellowship between the father and the son.
और ये बाप और बेटे के दरमियान एक कामल रफाकत का ताल्लुक है, ये रिश्ता है.
A God who is a bare monad of only one person.
और अगर खुदा सिर्फ एक ही उसकी शख्स में एक ही यानी उसकी जात में एक ही शख्स होता.
Cannot have communion and fellowship in himself.
तो वो खुद में जो है वो रफाकत और शराकत कैसे रख सकता है.
And the truth of the Holy Trinity for Christians.
और मसीहों के लिए पाक तसलीस की सच्चाई.
Means that we fellowship and commune with each other.
और उसी की वजह से है कि हम भी एक दूसरे से रफाकत और शराकत रखते हैं.
And means that young people don't hive off on their own and never talk to anybody.
और इसी तरह से बाज़ नौजवान जब दूसरों से बात नहीं करते.
The God of communion and fellowship creates this desire inside his people.
लेकिन जो खुदा सालूस की ये सिफ्त है ये हमारे अंदर भी यानी ये खूबी पैदा करती है कि हम भी दूसरों के साथ रफाकत और शराकत रख सकें.
The Trinity makes salvation a possibility and a reality.
और खुदा सालूस या पाक तसलीस ही हमारे लिए निजात को क्या करती है, मुमकिन बनाती है.
Only if Jesus Christ is not only man but God.
अगर यीशु मसीह सिर्फ इंसान ही होता और खुदा ना होता.
Only if he is God can he bear the infinite wrath of God.
अगर वो सिर्फ खुदा ही होता तो क्या वो खुदा के गज़ब को बर्दाश्त कर सकता.
He is God bearing the infinite wrath of God for our sakes.
उसने ये सारा कुछ किस लिए बर्दाश्त किया, हमारे लिए कामिल इंसान के तौर पर.
Only if Jesus is God can he obtain for us the righteousness of God.
और अगर यीशु मसीह सिर्फ इंसान ही होता तो क्या हमारे लिए वो खुदा की रास्तबाजी को हासिल कर सकता.
Which we receive by faith alone.
जो हमें सिर्फ ईमान से मिली है.
As we heard in the last session.
जैसा कि हमने पिछले सेशन में सुना.
The Nicene Creed of 325 states this.
और जो निकाया का कीदा है जो 325 में लिखा गया वो इसके बारे में फरमाता है.
The divine son for us men and for our salvation came down from heaven.
और निकाया के कीदे में लिखा कि यीशु मसीह हमारी खातर आसमान से उतर आया यानी जमीन पर आया.
Not only must Christ be God, but the Son must be God, the Spirit must be God for our salvation too.
इसलिए लाज़म है और ज़रूरी है कि बाप भी खुदा है, बेटा भी खुदा है और कुछ भी.
Only if the Holy Spirit is God can He regenerate and sanctify the entire global church spiritually.
और अगर खुदा ना होता तो क्या पूरी दुनिया में वो लोग नए सिरे से पैदा होते?
Only if the Holy Spirit is God can he resurrect and glorify the entire global church bodily at the last day.
और अगर रूह कुछ सिर्फ खुदा होता तो क्या ये आखिर में जो अदालत होगी या जो काम हम करते हैं ये हो सकते?
God the Father saves us from our sins.
Yes.
And brings us into loving fellowship in the covenant of grace.
तो जो बातस्लीस है ये तीनों कानून जो है ये हमें रफाकत में लाते हैं और फजल के अहद में शामिल करते हैं.
The Father does this through the Son and by the Holy Spirit.
और बाप ये बेटे के जरिए से और रूह कुछ के वसीला से करता है.
And the covenant fellowship that is in God.
और हमारी जो अहद की शराकत है खुदा के साथ.
Is recreated in us with Him.
वो हमारे अंदर उसी के वसीला से पैदा की गई है.
And in the communion of the saints.
और मुकद्दसों की शराकत भी.
The Trinity creates, constitutes, and consecrates the church.
और जो पाक तसलीस है वही कलीसिया को कायम करती है और उसे पाक करती है.
What is the church?
कलीसिया क्या है?
The church, the Bible says in many places.
बाइबल में बहुत से जगहों पर लिखा है.
Is a Trinitarian temple.
के वो खुदा का मकदस है यानी खुदा सालूस का मकदस है.
The church is the temple of the Holy Spirit.
Yes.
Through whom the Father and the Son dwell in God's people.
Kalisia jo hai khuda salus ka maqsad hai jisme khuda kya karta hai rehta hai basta hai.
That's Ephesians 2.
Ephesians 2.
1 Corinthians 3, 1 Corinthians 6.
Pehla Corinthians 3 bab, chhata bab.
2 Corinthians 6.
Dusra Corinthians 6 bab.
And so on.
Aur bahut sare hawale.
How does one enter the visible church, the church institute?
और कैसे कोई शख्स है वो कलीसिया में शामिल होता है?
By Trinitarian water baptism.
पानी के बपतिस्मे के जरिए से जब उसे बाप और बेटे कुछ के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है.
We are baptized in the church in the name singular, the one being of God.
और इसलिए वहां पर यह नहीं लिखा कि नामों का नहीं कहा गया बल्कि क्या सीगा वाहिद इस्तेमाल हुआ है कि बाप और बेटे और कुछ के नाम से
the one name of the father and the son and the holy spirit one name for three persons
यानी तीनों अशकास के लिए एक ही नाम इस्तेमाल हुआ है
it's not in the names plural of the father son and holy spirit
और ये जो है सीगा जमा इस्तेमाल यहां पे नहीं किया गया एक ही किया गया है सीगा वाहिद
And how does God bless the church?
खुदा किस तरह कलीसिया को बरकत देता है?
The Trinitarian blessing.
जो हम दुआएं आखिर में कलमाते बरकत करते हैं वो भी जो है वो तसलीसी कुलिया ही है.
The grace of our Lord Jesus Christ.
खुदा यीशु मसीह का फजल.
And the love of God.
खुदा बाप की मोहब्बत.
And the communion of the Holy Ghost.
और उनकुछ की शराकत.
Be with you all.
आप सबके साथ होती रहेगी.
Amen.
Amen.
Amen.